रेखा राजवंशी पिछले 20 साल से ऑस्ट्रेलिया में हिंदी साहित्य का एक जाना माना नाम रही हैं। हाल ही में इस लेखिका और कवयित्री को भारत में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हिंदी विदेश प्रसार सम्मान भी प्राप्त हुआ है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर रेखा जी बताती हैं कि उन्हें ये सम्मान पाकर कैसा लग रहा है।
तो मैंने हिंदी साहित्य के लिए काम किया, हिंदी शिक्षण किया बहुत साल ऑस्ट्रेलिया में, और हिंदी के सभी लेखकों को जोड़ के 3 पुस्तकों का संपादन भी किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा, लेकिन जो जब बाहर से लोग आते हैं, विदेशों से जो भी लेखक आते हैं या भारत से, वो मुझसे संपर्क स्थापित करते हैं, और होता ये है कि उन्होंने मेरे काम को देखा और उन्होंने मुझे शायद नॉमिनेट किया इस अवार्ड के लिए, और मुझे खबर आई कि ये इस साल का अवार्ड आपको दिया जा रहा है। तो ये 2 अवार्ड हर साल किसी भी प्रवासी साहित्यकार को उसके काम के लिए दिए जाते हैं हिंदी से संबंधित।
आप उस समय भारत में ही थी जब आपको ये अवार्ड दिया गया, तो आप खुद इसको जा करके ले भी सकी थी, तो कैसा लगा था आपको?
बहुत अच्छा लगा था, और कोई भी सम्मान किसी को भी मिले उसको अच्छा ही लगेगा, लेकिन ये था कि वहां मुझे और साहित्यकारों से भी मिलने का और ये भी जानने का अवसर मिला कि कितना लोग जुट कर मिलकर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं। और भाषाएं तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, भाषाएं सीखना भी बहुत जरूरी है मुझे लगता है, और एक से ज्यादा भाषा अगर हम बोल पाते हैं तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। और भारत में तो लगभग सभी लोग अंग्रेजी, हिंदी, और अगर रीजनल लैंग्वेज आती है तो पंजाबी या कन्नड़ा या तेलुगु या कोई भी भाषा और तीसरी बोल सकते हैं।
जी, तो रेखा जी, आपने एक संस्था की स्थापना भी की है जिसका नाम है इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट्स सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो आपने संस्था स्थापित की, इसका क्या उद्देश्य रहा और अब तक इसके अंतर्गत आपने क्या क्या काम किए हैं?
तो वृशाली, हमने 2010 में ये संस्था स्थापित की थी, और संस्था का उद्देश्य यही था कि किसी भी भाषा के साहित्य को और उसके उससे संबंधित गतिविधियों को ऑस्ट्रेलिया में और बढ़ावा दिया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया भर के साहित्यकारों को ढूंढ ढूंढ के जोड़ा, जहां भी मुझे लगा कि यहाँ पर कोई लिखता है तो उसको मैंने कोशिश की कि और प्रोत्साहन दिया जाए, और एक अपना समूह बनाया व्हाट्सएप पर हिंदी प्रेमी, और इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सबसे मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की जो नेटवर्क थी हिंदी से रिलेटेड संबंधित, जो भी लोग कार्य कर रहे थे शिक्षण या साहित्य से संबंधित, वो एक मंच पर एक साथ उपस्थित हो सके। और इस संस्था के अब 10 साल हो चुके हैं, इसके माध्यम से हमने बहुत सी गतिविधियां अब तक ऑर्गेनाइज की हैं, जैसे कि कवि सम्मेलन युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, हमने सिडनी यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम रखा, हिंदी का सम्मेलन किया जिसमें मेलबर्न से भी लोग आए, डॉक्टर येन वुल्फर्ड आए, और हमने न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट हाउस में एक यूथ पोइट्री कंपटीशन किया हिंदी पर, और हिंदी दिवस पर हमने विविध गतिविधियां ऑर्गेनाइज की, जैसे अभी हमने पिछले साल नाटकों का एक कंपटीशन रखा था हिंदी नाटकों का।
जी, तो ऑस्ट्रेलिया में हिंदी बच्चों को पढ़ना लिखाना आपको लगता है कि कितना जरूरी है? ये
बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि इस तरह के काम में बहुत से विद्यालय पहले से लगे हुए हैं। एक विद्यालय में मैंने भी करीब 10-11 साल पढ़ाया, बाल भारती हिंदी स्कूल, और दूसरे विद्यालय भी हैं, साउथ एशियन स्कूल है एक, वो भी हिंदी को बहुत बढ़ावा देता है, उसकी भी 3 ब्रांचेस हैं। सैटरडे स्कूल में भी हिंदी शनिवार को कक्षा 7 से लेके 12 तक पढ़ाई जाती है। तो मैं ये कह रही थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिसर्च प्रकाशित हुई थी जिसमें लिखा था इस सदी के अंत तक दुनिया में बोले जाने वाली आदि भाषाएं समाप्त हो जाएंगी, और बहुत सारी समाप्त हो चुकी हैं, बहुत सारी समाप्त प्राय हैं, और बहुत सारी भारतीय भाषाएं भी लुप्त होती जा रही हैं। तो इसमें हमारा हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि हम अपनी भाषा अपने बच्चों को सिखाएं, और बहुत फायदे हैं इसको सीखने के विशाली, क्योंकि हम भारत जाएं बच्चे तो हमारे बच्चे लोगों की बात समझ सकते हैं, किसी भी प्रांत में जाएं हिंदी बोली जाती है और वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं।
रेखा जी, हिंदी का जो विस्तार खासकर ऑस्ट्रेलिया में और खासकर नई पीढ़ी के बीच में, तो दोनों ही तरह से पठन और पाठन का किस तरह से किया जा सकता है जिसमें जो ये नई पीढ़ी है वो खुद को शामिल पाए?
तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि हम कुछ इंटरैक्टिव प्रोग्राम बनाएं, ऑडियो विजुअल। अंग्रेजी में तो बहुत है, हिंदी में भी इस तरह का प्रयास चल रहा है, और जिसमें बच्चे सुन सकें और उसके बाद बोल सकें, तो अच्छे शिक्षण साधन विकसित हों। और दूसरी बात यह है कि बच्चों के साथ हम डायरेक्टली उनके साथ कॉन्टैक्ट करके, उनको शामिल करके हम कुछ नाटक कर सकते हैं, कविता प्रतियोगिता कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ हम इस तरह के रिसोर्सेज बना सकते हैं कि जो कि बच्चों को आराम से मिल जाए और वो उनसे लाभान्वित हो सके।
बात सिर्फ बच्चों की नहीं है रेखा जी, जैसे जो बड़ी हो रही है पीढ़ी हमारी, जो कहीं कॉलेज में है या अंडर ग्रेजुएट में है या 17-18 साल के जो बच्चे हैं, उनको किस तरह से हिंदी से जोड़ा जा सकता है?
तो एक तो ये है कि हम जब मैं पढ़ा रही थी जैसे प्रौढ़ शिक्षण में, तो मैं देखती थी कि जो भी कार्यक्रम है वो इतनी तेज हिंदी में बोले गए हैं, या वो जो संघर्ष करते थे हिंदी के डायलॉग समझने में भी मूवी के, तो हम कुछ इस तरह की सामग्री विकसित करें जो थोड़ा धीरे बोलकर। और बहुत जरूरी है कि हिंदी को रोजगार से जोड़ा जाए। अगर हिंदी सीखने से यूनिवर्सिटी कुछ एक्स्ट्रा एटार पॉइंट्स देती है या हमें कुछ एडमिशन के लिए उससे कोई फायदा होता है, तो बच्चे जरूर उस तरफ आकर्षित होंगे। और दूसरी चीज है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये तो खैर अच्छी बात है कि हर भाषा को सीखने के अवसर है और उसकी सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन आगे चल के जैसे बच्चे विश्वविद्यालय में जाते हैं हिंदी को छोड़ देते हैं। मेरे ही बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने बाद में हिंदी को छोड़ दिया, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि किसी ना किसी तरह हम उनको ये सिखाएं कि ये भाषा आपके पूरी जिंदगी काम आएगी, बच्चे इससे जुड़े रहें और इसको बोलें और इसका विस्तार करें, अपने आगे वाली पीढ़ी को भी सौंपें।
जी, तो रेखा जी अभी तक तो आप 8 किताबें लिख चुकी हैं और आपने कई किताबों का संपादन भी किया है, ट्रांसलेशन भी किया है, तो अब आगे की क्या परियोजना है?
तो वैशाली, एक जो मैंने अभी आखिरी प्रोजेक्ट किया वो उसमें ऑस्ट्रेलिया भर के 20 साहित्यकारों की कहानियां हैं उसमें, और ये पुस्तक अभी हमारी प्रकाशित होने जा रही है। और इसके अलावा मैं अपनी दूसरी कहानी की किताब पर काम कर रही हूँ। पर सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि ऑस्ट्रेलिया भर की बहुत सी किताबें इस वक्त सामने आई हैं, जैसे पर्थ से किताबें आई हैं, मेलबर्न से किताबें आई हैं, कैनबरा के लेखक भी लिख रहे हैं और सिडनी के लेखक भी लिख रहे हैं। तो साहित्य का जहाँ पर कोई रूप नहीं था पिछले 10-20 सालों में, ये बहुत आगे उभर के आया है। यूरोप और अमेरिका की तरह हमारे ऑस्ट्रेलिया के साहित्यकारों को भी लोग जानने और पहचानने लगे हैं।
तो रेखा जी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दिन अगर आप हमें हिंदी पे कुछ पंक्तियां सुना दें तो बड़ा मजा आ जाएगा हमें भी और हमारे श्रोताओं को भी।
जरूर विशाली, तो 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। विश्व की भाषा बने ये कल्पना, आओ हिंदी की सजाएं अल्पना। प्रेम हो, सद्भाव हो, सत्कार हो, मातृभाषा का जहां आधार हो, सर्व मंगल हो यही है कामना, आओ हिंदी की सजाएं अल्पना। और संस्कृत से जन्म लेकर जब चली, फारसी उर्दू और अरबी से मिली, नई शैली रूप नव अभिव्यंजना, आओ हिंदी की सजाएं अल्पना। आन पहुंचे हैं समंदर पार जब, मातृभाषा का मिले आधार तब, सीखे सब हिंदी यही संकल्पना, विश्व की भाषा बने ये कल्पना। आओ हिंदी की सजाएं अल्पना और विश्व की भाषा बने ये कल्पना।
बहुत सुंदर रेखा जी, बहुत सुंदर आपने कविता सुनाई और आप हमसे जुड़ी, इसके लिए बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद विशाली मुझे जोड़ने के लिए।